एकत्र ज्ञानोगोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञानोगोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी दार्शनिक गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे जो आज भी उतनी ही ताज़ा है जितनी लगभग 200 साल पहले थी।
हाँ बिल्कुल,
हम बात कर रहे हैं डेनमार्क के विचारक सोरेन किर्केगार्ड की मशहूर और थोड़ी पेचीदा किताब आइदर और, यानी ईदर और की।
हाँ, और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो जैसे जिंदगी जीने के दो बिल्कुल अलग रास्तों का नक्शा है ना।
सही कहा।
सोचिए आज हम सब कितने विकल्पों से घिरे हैं, करियर, रिश्ते, क्या खाएं, कहाँ जाएं, अनगिनत।
हाँ, हर कदम पर।
तो ये किताब हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि इन सब विकल्पों के बीच हम चुनाव कैसे करते हैं, और क्या हमारे चुनाव हमें असली खुशी और एक मतलब भरी जिंदगी की तरफ ले जा रहे हैं।
बिल्कुल, यही सवाल है। तो आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। किर्केगार्ड के सौंदर्य परख, मतलब एस्थेटिक, यानी सिर्फ आनंद और मजे के लिए जीने वाले रास्ते,
हाँ,
और नैतिक यानी एथिकल, यानी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता वाले रास्ते के बीच के फर्क को जानेंगे।
अच्छा,
हमारे पास इस किताब के गहरे विश्लेषण और सारांश हैं जिनकी मदद से हम इन विचारों को आसान बनाएंगे और देखेंगे कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे मायने रखते हैं।
ठीक है, तो शुरुआत लेखक से करें, सोरेन किर्केगार्ड।
हाँ बिल्कुल, सोरेन किर्केगार्ड 19वीं सदी के डेनमार्क के दार्शनिक थे। कई लोग उन्हें पहला अस्तित्ववादी यानी एग्जिस्टेंशियलिस्ट विचारक मानते हैं।
अस्तित्ववादी मतलब वो जो मानते हैं कि इंसान पहले दुनिया में आता है और फिर अपने चुलावों से अपनी पहचान बनाता है, कुछ ऐसा।
हाँ बिल्कुल वही, और किर्केगार्ड अपने जमाने के हिसाब से काफी विद्रोही किस्म के थे।
अच्छा, कैसे।
वो उस समय के बड़े दार्शनिकों जैसे हेगल की बड़ी बड़ी अमूर्त बातों को पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि ये बातें असल जिंदगी की उलझनों से कोसों दूर हैं।
हाँ, प्रैक्टिकल नहीं।
हाँ, और साथ ही वो चर्च के जो औपचारिक बिना जोश वाले रवैये थे उसके भी आलोचक थे।
अच्छा, और उनकी अपनी जिंदगी, मैंने सुना है वो भी काफी उतार चढ़ाव वाली थी।
हाँ, उनकी अपनी जिंदगी भी काफी नाटकीय थी, खासकर रेगिन ओल्सन नाम की महिला से उनकी टूटी हुई सगाई।
ओह हाँ, वो किस्सा।
कहते हैं सनुभव ने उनके लेखन में पसंद, प्रतिबद्धता, पछतावा जैसे विषयों को और गहरा कर दिया।
समझ आता है, शायद इसीलिए वो व्यक्ति के अंदरूनी जिंदगी, उसके डर, उसकी आस्था और सबसे ज्यादा उसके चुनाव करने की ताकत और जिम्मेदारी पर इतना जोर देते थे।
और उनका लिखने का तरीका भी बहुत अनोखा था। वो अक्सर छद्म नामों से लिखते थे, स्यूडोनिम्स।
छद्म नाम मतलब किसी और नाम से।
हाँ, अलग अलग काल्पनिक किरदारों के नाम से। आइदर और भी उन्होंने सीधे अपने नाम से नहीं लिखी, इसे ऐसे पेश किया गया है जैसे ये किसी संपादक विक्टर एरेमिटा को मिले दो अलग अलग लोगों के कागजात हों।
अच्छा, ये तो दिलचस्प है, कौन थे ये दो लोग।
एक है ए, जो सौंदर्य परक जीवन जीता है, और दूसरा है न्यायाधीश विल्हेम, यानी बी, जो नैतिक जीवन की वकालत करता है।
तो ये कोई स्टाइल मारने का तरीका नहीं था, है ना, इसके पीछे कोई गहरी सोच होगी।
बिल्कुल, इसे वो अप्रत्यक्ष संवाद कहते थे, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन।
अप्रत्यक्ष संवाद।
वो चाहते थे कि पढ़ने वाला सीधे लेखक की बात मान ना ले, बल्कि इन अलग अलग दृष्टिकोणों को महसूस करे, उनसे जूझे
और खुद अपना रास्ता चुने। हाँ, ये पाठक को सोचने पर मजबूर करने का एक तरीका था, सही।
तो इस किताब का निचोड़ क्या है फिर? ये असल में एक सवाल खड़ा करती है, जिंदगी कैसे जीनी चाहिए?
हाँ,
क्या हमें हर पल नए अनुभव, सुंदरता और उत्तेजना के पीछे भागना चाहिए जैसा ए करता है, जिसे सौंदर्य परक कहा? हाँ, या फिर हमें जिम्मेदारी, रिश्ते निभाने और समाज के नियमों के हिसाब से चलना चाहिए जैसा बी यानी न्यायाधीश विल्हेम कहते हैं?
और किर्केगार्ड सिर्फ इन दो रास्तों को दिखा नहीं रहे, वो हमें उस कश्मकश को महसूस कराना चाहते हैं जो
हाँ
इन दोनों के बीच चुनने में होती है। उनका मानना है, और ये किताब का केंद्रीय विचार है शायद,
हाँ
कि सिर्फ मजे और बौद्धिक उत्तेजना के पीछे भागने वाला सौंदर्य परक जीवन आखिरकार हमें खालीपन और निराशा की तरफ ले जाता है। आप एक चीज से दूसरी चीज पर कूदते रहते हैं लेकिन कहीं टिक नहीं पाते।
सही बात है, एक ठहराव नहीं आता।
बिल्कुल, इसके उलट नैतिक जीवन, जो प्रतिबद्धता, शादी, काम और सामाजिक जिम्मेदारियों पर आधारित है,
हाँ
शायद उतना रोमांचक न लगे पहली नजर में, लेकिन कीर्केगार्ड न्यायाधीश विल्हेम के जरिए तर्क देते हैं कि यही रास्ता हमें एक स्थिर पहचान, जीवन में मकसद और गहरी टिकाऊ खुशी दे सकता है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव करने का काम ही हमें इंसान बनाता है। ये बात बहुत अहम है।
पहले बात करते हैं एके सौंदर्य परक दुनिया की।
हाँ, ये सुनने में ज्यादा मजेदार लगती है शायद।
है तो ये दुनिया चमक दमक, बुद्धिमत्ता और लगातार कुछ दिलचस्प की तलाश से भरी है। एके शुरुआती लेख, जिन्हें डाइप्स माटा कहा गया है, वो छोटी छोटी, कभी मजाकिया कभी उदास करने वाली बातें हैं।
अच्छा, जैसे?
जैसे वो कहता है, लोग कितने बेतुके हैं, वे कभी अपनी आजादी का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हमेशा और आजादी मांगते रहते हैं। ये दिखाता है कि वो जिंदगी को लेकर कितना ऊबा हुआ और शायद थोड़ा निराश भी है।
हाँ, और वो बोरियत से बचने के लिए अजीब अजीब तरकीबें सोचता है, जैसे वो क्रॉप रोटेशन वाली बात।
हाँ,
उसका मतलब ये नहीं कि वो खेत बदलता है, बल्कि वो चीजों को देखने का नजरिया बदलता रहता है ताकि कुछ भी उबाऊ ना लगे।
मतलब मूड बदलने के लिए चीजें नहीं, नजरिया बदलो। हाँ, वो किसी भी चीज से गहरा लगाव नहीं रखता, न लोगों से न विचारों से। उसका लक्ष्य है जिंदगी को हमेशा दिलचस्प बनाए रखना, चाहे वो कितनी भी खोखली क्यों न हो अंदर से।
ये सुनने में शायद आकर्षक लगे, पर इसका एक बहुत डरावना पहलू भी है ना, वो मोहक की डायरी वाला हिस्सा, द सेड्यूसर्स डायरी।
हाँ, वो किताब का सबसे विवादास्पद हिस्सा है। ये जोहान्स नाम के एक किरदार की डायरी है, जो एक लड़की कॉर्डेलिया को बहकाने की पूरी साजिश रचता है।
और उसका मजा लड़की को पाने में नहीं है।
नहीं, उसका मजा उसे मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने और नियंत्रित करने में है। जैसे ही वो सफल होता है, उसका खेल खत्म हो जाता है और वो उसे छोड़ देता है, बिल्कुल ठंडा।
ये पढ़ना वाकई परेशान करने वाला है।
कीर्केगार्ड यहाँ ये नहीं दिखा रहे हैं कि बहकाना कितना रोमांचक है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
बल्कि वो ये दिखा रहे हैं कि जब आप सिर्फ अपने आनंद और बौद्धिक खेल के लिए जीते हैं, बिना किसी जिम्मेदारी के, तो आप कितने क्रूर और अंदर से कितने खाली हो सकते हैं। हाँ, ये सौंदर्य परक जीवन का चरम है और वो बहुत अंधकारमय है। उस रास्ते का अंत है ये।
बिल्कुल। तो अब आते हैं दूसरे विकल्प पर, बी, यानी न्यायाधीश विल्हेम का नैतिक जीवन।
हाँ, जो ए को लंबे लंबे पत्र लिखते हैं।
सही, जिसमें वो सौंदर्य परक जीवन की कमियों को उजागर करते हैं और नैतिक जीवन का बचाव करते हैं।
उनका एक मशहूर तर्क विवाह के पक्ष में है ना, जिसे ए जैसे लोग बोरिंग मानते हैं।
हाँ, बिल्कुल। ए के लिए शादी मतलब रोमांस का अंत, लेकिन न्यायाधीश विल्हेम कहते हैं कि असली सुंदरता क्षणिक आकर्षण में नहीं, बल्कि लंबे समय की प्रतिबद्धता, साझा इतिहास और एक दूसरे के प्रति वफादारी में है।
वो कहते हैं कि प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक चुनाव है, एक संकल्प है, विल पावर का काम है।
और यहीं पर किताब का दिल है, चुनाव का महत्व। न्यायाधीश विल्हेम ए से कहते हैं कि तुम्हारी असल समस्या ये नहीं कि दुनिया बोरिंग है,
बल्कि ये है कि तुम कभी कुछ चुनते ही नहीं हो।
हाँ, तुम हमेशा संभावनाओं में खोए रहते हो, कभी किसी एक रास्ते पर चलने का फैसला नहीं करते। वो कहते हैं कि इंसान तभी अपनी असली पहचान बनाता है जब वो पूरी जिम्मेदारी से चुनाव करता है, आइदर और, या ये या वो।
ये स्वयं का चयन, चूजिंग वन सेल्फ वाली बात बहुत गहरी है। इसका मतलब सिर्फ करियर या पार्टनर चुनना नहीं है, है ना?
नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इसका मतलब है अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना, अपने अतीत, अपनी सीमाओं, अपनी ताकतों को स्वीकार करना, और फिर ये तय करना कि आप इस सबके साथ क्या बनना चाहते हैं।
तो नैतिक व्यक्ति भागता नहीं, बल्कि चुनता है और उस चुनाव से अपनी पहचान बनाता है, सीमाओं को अपनाकर स्वतंत्रता पाता है।
सही। तो इन दोनों रास्तों की पड़ताल से हमें क्या बड़े सबक मिलते हैं? आपके ख्याल से पहला और सबसे बड़ा सबक क्या है?
मेरे ख्याल से तो यही कि चुनाव करना जरूरी है। कीर्केगार्ड हमें ये नहीं बता रहे कि क्या चुने, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि चुनना ही होगा। अगर हम सिर्फ संभावनाओं में तैरते रहेंगे तो हम कभी ठोस जमीन पर पैर नहीं रख पाएंगे, कहीं पहुंचेंगे नहीं।
बिल्कुल। दूसरा सबक जुड़ा है निराशा से। कीर्केगार्ड के लिए निराशा सिर्फ मूड खराब होना नहीं है, ये स्व की, मतलब सेल्फ की बीमारी है।
अच्छा, कैसे?
जब हमारी कोई पक्की पहचान नहीं होती, जब हम बस बाहरी उत्तेजनाओं पर जीते हैं एक ही तरह, तो हम अंदर से निराश हो जाते हैं, और नैतिक चुनाव यानी प्रतिबद्धता हमें एक पहचान देकर इस निराशा से बचा सकती है,
एक एंकर देती है जैसे।
ये बात तो है।
और तीसरा, बोरियत का डर। ए के लिए बोरियत सबसे बड़ा दुश्मन है, और आजकल भी हम सब इससे कितना भागते हैं।
हाँ, लगातार फोन चेक करना, नई सीरीज देखना, नए अनुभव खोजना।
कीर्केगार्ड हमें आगाह करते हैं कि बोरियत से लगातार भागना भी एक जाल है। यह हमें किसी भी चीज से गहराई से जुड़ने नहीं देता और आखिर में ज्यादा बड़े खालीपन की तरफ ले जाता है।
हाँ, और चौथा सबक रिश्तों के बारे में है। वो मोहक की डायरी दिखाती है कि बिना प्रतिबद्धता वाला रिश्ता कितना शोषणकारी हो सकता है।
हाँ।
वहीं न्यायाधीश विल्हेम का विवाह का बचाव हमें याद दिलाता है कि लंबे समय के रिश्ते में, जिसमें जिम्मेदारी और वफादारी हो, एक अलग तरह की गहराई और सुंदरता होती है।
ये आज के डेटिंग कल्चर और वो जो कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसके दौर में सोचने वाली बात है।
बिल्कुल। किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं, जैसे ए का वो मशहूर कहना।
हाँ, वो वाला।
शादी करो, तुम्हें पछतावा होगा। शादी मत करो, तुम्हें भी पछतावा होगा। शादी करो या ना करो, तुम्हें दोनों तरह से पछतावा होगा। सज्जनों, यही सारे दर्शन का सार है।
ये सुनने में कितना निराशाजनक लगता है। ये दिखाता है कि सौंदर्यवादी कैसे हर चीज में कमी देखता है और फैसला करने से बचता है। अगर हर रास्ते में पछतावा ही है तो चुनने का क्या फायदा? जिंदगी एक मजाक बन जाती है।
बिल्कुल। लेकिन फिर न्यायाधीश विल्हेम इसका जवाब देते हैं एक तरह से।
हाँ, क्या कहते हैं वो?
चुनाव स्वयं व्यक्तित्व की सामग्री के लिए निर्णायक है। जब वो नहीं चुनता है तो वो मुरझा जाता है और तड़पता है।
वाओ, ये सीधा जवाब है। पहचान बनी बनाई नहीं मिलती, उसे चुनकर जीकर बनाना पड़ता है। जब आप किसी चीज के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तो आपका व्यक्तित्व आकार लेता है।
और चुनने से इनकार करना मतलब खुद को बनने से रोकना है, और इससे आत्मा, जैसे वो कहते हैं, मुरझा जाती है।
सही। एक और पंक्ति जो एक ही दुनिया दिखाती है। ऊब सभी बुराई की जड़ है। देवता ऊब गए थे, इसलिए उन्होंने मनुष्य बनाए।
ये मजाकिया लगता है, पर ये दिखाता है कि सौंदर्यवादी के लिए बोरियत कितनी बड़ी और भयानक चीज है। उसका पूरा जीवन इसी से बचने की एक हताश कोशिश है।
तो ये सारे विचार आज हमारे लिए कैसे मायने रखते हैं आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में?
एक तो है ये एनालिसिस पैरालिसिस वाली बात, मतलब सोचते ही रह जाना।
हाँ, इतने विकल्प है कि सोचते ही रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते।
बिल्कुल।
कीर्केगार्ड की सलाह है, सोचो, समझो, लेकिन फिर हिम्मत करके एक रास्ता चुनो और उस पर चलो। हमेशा सारे दरवाजे खुले रखने की कोशिश में हम कहीं नहीं पहुंचते।
और रिश्तों में भी, क्या हम हमेशा अगले बेहतर विकल्प की तलाश में रहते हैं, जैसा आजकल डेटिंग ऐप्स पर होता है? या हम किसी रिश्ते में टिककर उसे निभाने और उसमें गहराई खोजने की कोशिश करते हैं?
न्यायाधीश विल्हेम की बातें हमें याद दिलाती हैं कि प्रतिबद्धता में भी एक तरह की आजादी और संतोष है जो शायद लगातार बदलते रिश्तों में न मिले।
सही कहा। काम के बारे में भी सोच सकते हैं, क्या हम हमेशा सिर्फ पैशन और रोमांच वाले काम के पीछे भागते हैं?
हाँ, जो आजकल बहुत सुनने में आता है।
या हम अपने काम में, चाहे वो जैसा भी हो, जिम्मेदारी निभाकर, भरोसेमंद बनकर भी अर्थ ढूंढ सकते हैं? कीर्केगार्ड का नैतिक दृष्टिकोण कहता है कि कर्तव्य निभाने में भी एक गहरा संतोष मिल सकता है।
और आखिर में अपनी पहचान बनाना। ये किताब हमें पूछती है, आप कौन हैं, आप क्या बनना चाहते हैं और आप इसके लिए क्या चुनाव कर रहे हैं।
हाँ।
ये हमें याद दिलाती है कि हमारी पहचान कोई तयशुदा चीज नहीं है। हम इसे अपने फैसलों से, अपनी जिम्मेदारियों से गढ़ते हैं। स्वयं का चुनाव का मतलब है अपनी जिंदगी की कहानी लिखने की जिम्मेदारी लेना।
मेरे लिए इस पूरी चर्चा का सार यह है कि जिंदगी का मतलब खोजना नहीं पड़ता, उसे बनाना पड़ता है। अपने चुनावों से, अपनी प्रतिबद्धताओं से, हर चुनाव एक लकीर खींचता है हमारी कहानी में।
और अगर हम चुनने से बचते रहे तो पन्ना खाली रह जाएगा।
बिल्कुल। शायद तीन बातें याद रखने लायक हैं। सिर्फ मजे के पीछे भागना अंत में निराशा देता है। प्रतिबद्धता बंधन नहीं, बल्कि असली आजादी का रास्ता हो सकती है। और हम वही बनते हैं जो हम चुनते हैं।
और मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी कि कीर्केगार्ड हमें कोई सीधा जवाब नहीं देते, कोई फॉर्मूला नहीं देते। वो हमें बस आइदर और, या तो ये या वो के कांटे पे लाके खड़ा कर देते हैं।
हाँ, सोचने पे मजबूर करते हैं।
बिल्कुल, वो हमें मजबूर करते हैं कि हम खुद सोचें, खुद महसूस करें कि हमारे लिए क्या सही है। ये एक तरह की बौद्धिक और आत्मिक कसरत है।
और अंत में एक सवाल जो किताब छोड़ जाती है और जिसपे हम सब सोच सकते हैं, क्या नैतिक जीवन ही सब कुछ है, आखिरी मंजिल? या जैसा कि किताब के आखिर में एक पादरी के उपदेश से संकेत मिलता है, क्या एक तीसरा रास्ता भी है धार्मिक जीवन का,
जहां इंसान का रिश्ता सिर्फ समाज के नियमों से नहीं बल्कि किसी परम शक्ति से होता है, ईश्वर से?
हाँ, ये वो सवाल है जिसे किर्केगार्ड ने बाद में और खंगाला। शायद ये हमारी अपनी जिंदगी की यात्रा का अगला पड़ाव हो सकता है, या सोचने का एक और बिंदु।
एक गहरा विचार छोड़ जाता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।